आप क्या तैयारी करेंगे?
सबसे पहले अपनी सारी पुस्तकें बांध लेंगे, इमर्सन बोले, ताकि स्वर्ग में हमारा समय बेकार न जाए।
सेवन, लोकमान्य तिलक से एक मित्र ने पूछा, आपको नरक जाना पड़े तो क्या करेंगे?
अपने साथ पुस्तकें लेता जाऊंगा ताकि स्वाध्याय द्वारा नरक को भी स्वर्ग में बदलने वाले विचार इकट्ठा कर सकूं।
14, अपना महान महत्व समझें और अपने को सुधारें।
प्रश्न
1, हमारा सीखा जाना और सिखाया जाना किस तरह निरर्थक है? 2, हमको अपना महत्व समझना था पर हमने किस चीजों का महत्व समझा? 3, हम किन चीजों के प्राप्त होने से सुविधा अनुभव करते हैं? 4, हम हमारे में ही उपस्थित किन चीजों का महत्व भूल गए हैं? 5, सिद्ध कीजिए अपना आप सबसे महत्वपूर्ण है। 6, जो कुछ संसार में है उसकी अनुभूति हम अपने ही मापदंड से करते हैं,
उदाहरण से समझाइए।
7, बीमारियां कैसे आती हैं तथा उनसे निपटने का क्या रास्ता है? 8, विद्वानों की पंक्ति में किस तरह बैठा जा सकता है? 10, हमें अपना महत्व ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए?
कथाएं
1, वैद्य जी ने रोगी को दवा दी और कहा, बेटा इन्हें खाने से 2 दिन में खांसी अच्छी हो जाएगी। अभी वे अपनी बात पूरी तरह कह नहीं पाए थे कि उन्हें जोर की खांसी आ गई।
रोगी ना देखा वापस लौटाते हुए कहा, वैद्य जी पहले अपनी खांसी अच्छी कर लो, पीछे हमें बता देना।
2, बुरी संग में पढ़कर एक लड़के ने किसी से कर्ज ले लिया।
कर्ज चुकाने के लिए उसने घर से सोना चुराया पर इससे उसका हृदय पश्चाताप से झुलसने लगा।
सीधे कहने की तो हिम्मत नहीं हुई पर उसने पत्र में लिखकर अपने पिता को सारी बातें लिखकर क्षमा मांगी।
पिता ने समझ लिया लड़के का हृदय शुद्ध है तो उन्होंने क्षमा कर दिया। यही लड़का आगे चलकर गांधी जी के नाम से विश्व विख्यात हुआ।
3, बगल में खड़े 2 गुलामों की ओर इशारा करते हुए तैमूर लग ने कवि अहमदी से प्रश्न किया, बता सकते हैं इन गुलामों की कीमत क्या होगी? 5 टके अहमदी मुस्कराकर बोले, तैमूर गुस्सा होकर बोला, मैंने इन्हें 4000 अशफियों में खरीदा है। अहमदी बोले, खरीदा होगा पर संसार में जो सांसारिक बुराइयों का सामना नहीं कर सकता उस आदमी का मूल्य 5 टका से ज्यादा नहीं हो सकता। तैमूर अभिमान में आकर बोला, अच्छा बताओ मेरी कीमत क्या होगी? इस पर अहमदी हंसे और बोले, 2 टके। तैमूर आग बबूला हो उठा तो अहमदी ने स्पष्ट किया, जो अपनी ही बुराइयों का सामना नहीं कर सकता वह इन गुलामों से गया बीता ही होगा।
4, जो खुद को जीत लेता है वह सारे संसार को जीत लेता है। संत सुकरात अरस्तु को उपदेश कर रहे थे। पास ही एक गुफा में घुसे सिकंदर ने यह सुना तो उसके हर्ष का ठिकाना न रहा। अरस्तु इस उपदेश से जहां विश्व के महान दार्शनिक बने, वहां सिकंदर को इस संक्षिप्त उपदेश ने ही विश्व विजयी बना दिया। 5, श्रावस्ती के 2 गिरहकट वहां पहुंचे जहां भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए भीड़ एकत्र थी। एक गिरहकट तो लोगों की जेबें काटता रहा, दूसरा बुद्ध के उपदेश सुनने लगा।
भगवान बुद्ध कह रहे थे, जो अपनी बुराइयों को ढूंढना और उन्हें निकालने का साहस करता है वही सच्चा पंडित है।
बात हृदय में उतर गई। गिरहकट ने अपनी बुराइयां निकालनी प्रारंभ की और सचमुच एक दिन भगवान बुद्ध का परम प्रिय शिष्य बना।
6, शिक्षादि नमाज पढ़ने जा रहे थे, पांव में जूते न होने के कारण पांव बुरी तरह जल गए। तभी उन्हें एक साहूकार दिखा जिसके पैर में चमकती जूतियां थी।
शेखशादि ने कहा, वाह अल्लाह,
तू भी कितना पक्षपाती है, एक को तो चमकाते जूते और मुझे फटे पुराने भी नहीं।
शेख अभी यह सोच ही रहे थे कि पीछे खटखट की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक अपंग बैसाखी के सहारे चला आ रहा था।
शेख ने अपने को तमाचा मारा और कहा, भगवान यह क्या कम है कि तूने मुझे पैर तो दिए। 7, ब्रह्मा जी ने कुत्ता, बिल्ली, बैल, भेड़, हाथी, सांप एक एक कर अनेक जीव बनाए और सबसे पूछते गए, तुम्हारा जीवन कैसा है? सबने यही कहा, पितामह कष्ट और अभावों के अतिरिक्त हमारे जीवन में और कुछ भी तो नहीं है। इस पर पितामह ने एक सर्वांगपूर्ण मनुष्य शरीर की रचना की। कुछ दिन बाद मनुष्य को बुलाकर पूछा, कहो तुम्हें तो कोई अभाव नहीं है, पर मनुष्य ने भी वही कष्ट कह सुनाए जो अन्य प्राणियों ने कहे थे।
पितामह बहुत दुखी हुआ और बोले, तात, मनुष्य शरीर, मनुष्य का हृदय, मनुष्य की आत्मा देने के बाद मेरे पास कुल एक उपदेश बचा है, जाओ और अपनी सब बुराइयों ठीक करो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे और कोई उपाय नहीं। 15, कर्तव्य परायणता, मानव जीवन की आधारशिला। प्रश्न
1, आकाश में अधर में लटके हुए ग्रह नक्षत्र किस कारण गिर नहीं पाते?
2, मनुष्य जीवन की स्थिरता एवं प्रगति का आधार क्या है
तथा उसको भुला देने से क्या हानियां हो सकती हैं?
3, अपने ही शरीर के प्रति हमारी कर्तव्य परायणता को हमें किस प्रकार निभाना चाहिए?
4, परिवार के प्रत्येक सदस्य की क्या क्या जिम्मेदारियां परिवार के प्रमुख पर होती है? 5, परिवार के आनंद को कौन ले सकता है? 6, धन का उपार्जन किन गुणों के होने पर मनुष्य कर सकता है?
7, सार्थक संपन्नता का लाभ किस व्यक्ति को प्राप्त होता है? 8, गैर जिम्मेदार व्यक्ति किस प्रकार हानिकारक है?
9. शासन तंत्र की गैर जिम्मेदारी ने भारत देश को किस तरह हानि पहुंचाई है?
10. समाज के सदस्य किस प्रकार समाज के लिए हानि पहुंचाते हैं?
कथाएं 1. तब रतलाम के शासक श्री सज्जन सिंह थे। किसी अपराध में श्री श्रीनिवास शास्त्री को सिपाहियों ने पकड़ लिया। संयोग से मुकदमा जिस अदालत में गया उसके न्यायाधीश श्री शास्त्री के ही पुत्र थे। कानून के अनुसार पुत्र ने श्री शास्त्री को अपराधी पाया, अतएव उन्हें 6 माह की सजा और 500 रुपये आर्थिक दंड की सजा सुना दी। उनकी माँ इस पर पुत्र से बिगड़ी तो उन्होंने कहा, माँ जब सत्ताधिकारी ही न्याय न करेंगे तो सामान्य प्रजा का क्या होगा। महाराज ने सारा समाचार सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता को कैद मुक्त करा दिया और पुत्र को बड़ा स्थान दिया।
2. उदय सिंह तब छोटे थे इसलिए उनके बड़े न होने तक के लिए बनवीर को राज्य का उत्तराधिकारी सौंप दिया गया, पर उसके मन में लोभ आ गया। उसने उदय सिंह और विक्रम सिंह और मार डालने का निश्चय किया।
उदय सिंह की माँ का देहांत हो चुका था, उनका पालन पोषण पनाधाई ने किया था। पन्ना का अपना पुत्र भी था जो उदय सिंह के साथ ही रहता था। एक दिन बनवीर ने विक्रम सिंह की हत्या कर दी। पन्ना को इसका पता चला तो उसने उदय सिंह को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। क्रोध से भरा बनवीर उसके पास पहुंचा तो उसने अपने बच्चे को ही उदय सिंह बताकर उसका शीश कटा दिया, पर कर्तव्य पर आंच नहीं आने दी। 3. पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र में मूर्छित पड़े थे, उनके समीप ही उनके प्रधान सेनापति संयमराय भी घायल अवस्था में पड़े थे। रात हो चली थी।
संयमराय ने देखा कुछ भेड़िए और सियार सम्राट पृथ्वीराज की ओर लपक रहे हैं।
वे सम्राट को शिकार बनाए। इससे पूर्व ही संयमराय ने अपने शरीर का मांस काटकर गीदड़ों की ओर फेंका। गीदड़ उसी मांस को खाने लगे। जब तक एक टुकड़ा समाप्त होता तब तक संयमराय शरीर काटकर दूसरा टुकड़ा फेंक देते। इस तरह उन्होंने गीदड़ों को महाराज के शरीर से तब तक दूर ही रखा जब तक सैनिक वहां आकर मूर्छित पड़े महाराज को उठा नहीं ले गए।
आज पृथ्वीराज अमर हैं, पर उनकी नीति के साथ अपने अद्वितीय त्याग के कारण संयमराय का यश भी जुड़ा हुआ है और युगों तक जुड़ा रहेगा।
4. पांडव तक अज्ञातवास में थे। एक दिन एक ब्राह्मणी के घर रुके, उसे दुखी देखकर भीम ने दुख का कारण पूछा।
ब्राह्मणी ने बताया, इस नगर में एक भयंकर दैत्य रहता है। उसे प्रतिदिन नगर का एक व्यक्ति आहार के लिए भेजा जाता है। आज तो मेरे पुत्र की बारी है, यह सोचकर दुखी हो रहा हूँ कि आज वह मेरे इकलौते बेटे को ही खा जाएगा। भीम जानते थे कि दैत्य को मारने से कौरवों को पता चल जाएगा कि यह कृत्य केवल भीम का है। उसके फलस्वरूप फिर से 14 वर्ष वन में रहना पड़ सकता है, तो भी वे न डरे और न कर्तव्य विमुख हुए। अपने को खतरे में डालकर भी उन्होंने उस दैत्य का वध कर डाला। 5. एक सुअर के शिकार पर महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह में झगड़ा हो गया। दोनों ने तलवारें म्यान से निकाल ली। राजपुरोहित ने देखा राजवंश का अंत हुआ चाहता है, फलतः वे दौड़कर दोनों के बीच खड़े हो गए। तलवारें दोनों ओर से चल चुकी थीं। राजपुरोहित का शीश धड़ से अलग हो गया, पर वे मरते मरते भी सिखा गए कि परस्पर संघर्ष में अपनी ही हानि है।
6. इधर सरदार चूड़ावत विवाह करके लौटा, उधर औरंगजेब ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी।
जब सारे राजपूत युद्ध के लिए चल पड़े तब चूड़ावत इस मोह में पड़ा था कि वह अपनी नव विवाहिता को छोड़कर युद्ध में जाए या नहीं।
हाड़ा रानी को पता चला कि मेरे आकर्षण के कारण सरदार कर्तव्यच्युत हो रहे हैं, तो उसने अपना सिर काटकर एक सिपाही के हाथ सरदार के पास भेज दिया। सरदार ने रानी का कटा सिर देखा तो उसके शरीर में बिजली कड़क उठी। सारी द्विविधा मिट गई और ऐसा घोर युद्ध किया कि मुगलों को लेने के देने पड़ गए। 7. रात के 12 बजे एक सेनापति ने सैनिक को सोते से जगाकर पूछा, तुम्हें इसी समय शत्रु के मोर्चे पर भेजा जाए तो मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानूंगा, सैनिक ने उत्तर दिया। सेनापति बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, तुम कहीं भी पराजित नहीं हो सकते। यह सैनिक और कोई नहीं नेपोलियन बोनापार्ट था, जो नियम कर्तव्यों का भली भांति पालन करने के कारण 23 वर्ष की आयु में ही ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया था। 16. असत्य व्यवहार सद्भावना व सामाजिकता पर कुठाराघात। प्रश्न 1. मनुष्य का सर्वप्रथम गुण कौन सा है? 2.
सज्जनता की परख क्या है?
3.
मिथ्या बोलने से क्या हानि है? असत्य कितने प्रकार का होता है?
4. प्रतिष्ठा किसकी स्थिर रहती है? 5.
धन क्यों निंदनीय है?
6.
काय किसे कहा जाना चाहिए?
7.
ठगने वाला अधिक घाटे में कैसे रहता है? 8. सिद्ध कीजिए, दूसरों को धोखा देना अपने आप को धोखा देना है।
9. बहादुरी कहाँ से प्रारंभ होती है? 10.
झूठ को सबसे बड़ा पातक क्यों माना गया है?
कथाएं 1. एक अंग्रेज युवती ने इटली में घड़ी खरीदी। इंग्लैंड आने पर मालूम हुआ उसे ठग लिया गया। उसने इस बात का उल्लेख करते हुए इटली के अधिनायक मुसोलिनी को एक पत्र लिखा। मुसोलिनी ने अपने देशवासी द्वारा धोखादेही की क्षमा याचना की, क्षतिपूर्ति के पैसे भी भेज दिए।
कुछ दिन पीछे दूसरा पत्र दुकानदार का मिला, जिसमें क्षमा याचना के साथ लिखा था, मुझे अपने कृत्य पर बड़ी लज्जा है। मेरी दुकान सील बंद कर दी गई है, जब तक आप सिफारिश नहीं करेंगी दुकान नहीं खुल पाएगी।
युवती ने अनुभव किया राष्ट्रों के चरित्र ऐसे ही सुरक्षित रखे जा सकते हैं, उसने सिफारिशी पत्र लिख दिया।
दो, बम्बई के एक डॉक्टर ने एक मरीज को आम का अचार खाने की सलाह दी और कहा जब अचार लाना तो मुझे दिखा कर जाना। मरीज थोड़ी देर में एक शीशी लेकर लौटा और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सारा अचार फेंकवा दिया और कहा अच्छा होना है तो विलायती अचार खाओ, हिंदुस्तानी कंपनियां तो अचार में भी मिलावट करने से नहीं चूकती।
पास ही खड़े एक अचार वाले ने यह सुना तो उसका दिन धक से रह गया। हिंदुस्तान में विदेशी माल की साख। उसने उस दिन से शुद्ध और उम्दा अचार बनाकर बेचने का निर्णय किया।
उस अब्दुल हुमीन की ईमानदारी ऐसी फली कि आज उसके अचार की धूम सारी दुनिया में है। तीन तीन चारों ने चोरी में बहुत सा धन प्राप्त किया। घर लौट रहे थे तब मार्ग में उन्हें भूख लगी।
एक भोजन लेने गया, दूसरा पानी, तीसरा अकेला धन के पास रहा।
तीनों के मन में पाप आ गया कि क्यों न दोनों को मारकर धन हड़प कर लिया जाए। फलतः खाना लेने गया था, वह खाने में विष मिला लिया, पानी वाला पानी में। इधर जो धन के पास बैठा था उसने एक एक कर दोनों को तलवार से काट कर फेंक दिया। अकेला रह गया तो सोचो पहले खाना खा लूं तब चलूं, यह सोचकर वह खाना खाने बैठा और विषाक्त होने के कारण खुद भी वहीं ढेर हो गया।
फोर्ट गांधीजी स्कूल देर से पहुंचे, अध्यापक ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया बादल होने के कारण समय का पता नहीं चल पाया। इस उत्तर से अध्यापक संतुष्ट न हुआ, उसने उन पर एक आना जुर्माना कर दिया। इस पर गांधीजी रोने लगे।
लड़कों ने कहा अरे तुम एक आने के लिए रो रहे हो। गांधीजी थे तो बालक पर बोले मैं एक आने के लिए नहीं रो रहा, इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे झूठा समझा गया।
फाइव दो भाई थे, बंटवारा हुआ तो एक ने सट्टेबाजी में अपार धन कमाया, दूसरा खेती करके गुजारा करने लगा। एक दिन गरीब भाई के स्त्री ने कहा देखो तुम्हारे भैया ने कितनी संपत्ति कमाई है और तुम कुछ न कर सके। उन दिन पासा कुछ ऐसा पलटा कि वह सट्टे में सब कुछ हारकर भिखारी बन गया, जबकि पहले वाले के पास अब भी अपनी संपत्ति सुरक्षित थी। बेईमानी की कमाई देर तक नहीं टिकती। सिक्स श्री चिमनलाल सोतलवाड़ बम्बई की किसी फर्म में काम करते थे। एक मामले में बेचने के लिए एक आदमी उनके पास आया और 1,00,000 रुपये की रिश्वत देने लगा, पर श्री सीतलवाड़ ने उसे अस्वीकार कर दिया।
उस व्यक्ति ने कहा समझ लीजिए इतनी बड़ी रकम कोई देगा नहीं। श्री सीतलवाड़ हंसे और बोले देने वाले तो बहुत होंगे पर इनकार करने वाला तुम्हें कोई मुझ जैसा ही मिलेगा।
यही सीतलवाड़ एक दिन बम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। 18 हंसती और हंसाती जिंदगी ही सार्थक है। प्रश्न
एक, वह क्या वस्तु है जो धन दौलत की जगह दूसरे को दे सकते हैं
जिससे संतोष व पुण्य दोनों प्राप्त हों।
दो, प्रसन्न रहने के दो आधार है। तीन, क्या साधन संपन्न और अमीर ही केवल प्रसन्न रहते हैं, यदि नहीं तो समझाएं।
फोर, व्यक्ति अपने को यदि अप्रसन्न समझता है तो क्यों।
पांच, प्रसन्नता किस प्रकार प्राप्त किया जा सकती है।
सिक्स, किस प्रकार की मनःस्थिति वाला व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। सेवन, किस प्रकार की मनःस्थिति वाला व्यक्ति अप्रसन्न रहते हैं। एट, हमेशा हंसते हंसाते रहने वाले व्यक्ति खुद को तथा परिवार को किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं।
नौ, हंसना किस प्रकार अमीरों की दौलत से भी बढ़कर है।
कथाएं। वन, एक बार गांधीजी से एक लड़का मिलने आया। गांधीजी नियमित रूप से प्रतिदिन घूमने जाया करते थे, बातचीत के लिए लड़के को साथ ले लिया। उन्होंने पूछा तुम कौन लोग हो। अग्रवाल उत्तर मिला तो वे हंसकर बोले अग्रवाल तो मैं हूँ, आगे आगे चल रहा हूँ, तुम तो पीछे चलने वाले पिछवाल हो। यह सुनते ही साथ में चलने वाले सभी लोग हंस पड़े। टू, एक बार पत्रकारों की घिरी भीड़ में गांधीजी से एक विदेशी पत्रकार ने पूछा आपको विश्वास है कि मृत्यु के बाद आप स्वर्ग जाएंगे। गांधीजी मुस्कुराए और बोले मालूम नहीं स्वर्ग जाऊंगा या नरक, पर जहां भी जाऊंगा आप लोग वहां अवश्य होंगे। थ्री, संत सुकरात की पत्नी बड़े कर्कश स्वभाव की थी। एक दिन सुकरात अपनी बैठक में संभ्रांत लोगों से आवश्यक मंत्रणा कर रहे थे, उधर उनकी स्त्री को उन्हें निठल्ले बैठना अखर रहा था।
पहले तो वे सभी को गालियां देती रहीं पर किसी ने उधर ध्यान नहीं दिया, इस पर वे और भी क्रुद्ध हो उठी और जिस गंदे पानी से बर्तन धो रही थी वहीं उठकर सभी लोगों पर पटक दिया। जब तक दूसरे लोग कुछ कहें, सुकरात ने पत्नी की ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराए और बोले भाइयों मैंने तो सुना था जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं, पर आज तो बादल गरज भी रहे हैं और बरस भी। यह सुनते ही ऐसे कह कहे छूटे कि लोग हंसी के मारे लोटपोट हो गए।
केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नंबूदरीपाद से एक पत्रकार ने पूछा आप हमेशा हकलाते हैं। नंबूदरीपाद बोले जी नहीं, केवल बोलते समय हकलाता हूँ। फोर, एक बार एक अमेरिकन दंपति बापू से मिलने आए, बोले बापूजी आप अमेरिका कब चल रहे हैं, वहां के लोग आपके लिए पागल हो रहे हैं। बापू मुस्कुराए और बोले अरे तुम क्या मुझे पागल खाने लिए चलने आए हो।
चारों ओर हंसी फूट पड़ी। 5. एक बार एक स्त्री आए और बर्नार्ड शाह के सामने ही उनकी आलोचना करती हुई बोली, आपकी यह रचना बहुत खराब है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसी तेजी में बोलते हुए बर्नार्ड शाह ने कहा, बहन जी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, पर मुसीबत यह है कि लोग न तो आपकी बात मानते हैं और न ही मेरी।
6. तुकाराम की पत्नी बड़े कर्कश स्वभाव की थी। एक दिन तुकाराम को किसी मित्र ने गन्ने दिए। तुकाराम गन्ने लेकर चले तो रास्ते भर लड़के गन्ने मांगते और वे गन्ने बांटते रहे। रह गया गन्ने वन, तुकाराम उसे ही लेकर घर पहुंच। उनकी पत्नी ने एक गन्ना देखा तो आग बबूला हो उठी, वह गन्ना उठाकर तुकाराम पर दे मारा। गन्ना बीच से दो टुकड़े हो गए।
तुकाराम ने दोनों टुकड़े उठाए और हंसकर बोले, जो एक टुकड़ा तुम खाओ एक में। इस गजब की सहिष्णुता और प्रेम भाव पर पत्नी पानी पानी हो गई और अपना कटु स्वभाव छोड़ दिया। 7. आइंस्टीन के पास तीन चश्मे देखकर एक सज्जन ने पूछा, आप तीन चश्मा क्यों रखते हैं? आइंस्टीन बोले, एक दूर की वस्तुएं देखने के लिए, दूसरे से पास और तीसरा इन दोनों को ढूंढने के लिए।
8. प्रसिद्ध शायर शौकत थानवी एक मुशायरे में भाग ले रहे थे। भारी दाढ़ी वाले अनवर शाबरी जब शेर पढ़ने लगे तो फोटोग्राफर फोटो खींचने लगे।
उन्होंने गजल पढ़ना रोककर पूछा, भाई मेरी फोटो खींचकर क्या करोगे?
फोटोग्राफर कुछ कहे इससे पूर्व ही थानवी बोले, बच्चों को डराया करेंगे।
फिर क्या था, खूब कह कहे लगे।
9. सेठ जमनालाल भारी भरकम शरीर के थे। एक दिन बोले, बापू आप मुझे गोद ले लीजिए। गांधी जी बोले, ठीक है तुम मुझे गोद में लेकर खिलाया करना।
19. अपना ही नहीं कुछ समाज का भी हित साधन करें।
प्रश्न।
एक, अन्य पशुओं से मनुष्य आर्थिक, निवास एवं आहार के आधारों पर अलग है।
2. मनुष्य किस तरह सामाजिक प्राणी है। 3. सामाजिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए।
4. समाज के कई ऋण हमारे पर हैं, इसे चुकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 5. क्या हम अपना सारा समय सारी संपत्ति देकर समाज का भला कर सकते हैं। 6. सामाजिक जीवन के उत्कर्ष के लिए हमें क्या करना होगा। 7. आज के सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी सेवा क्या है।
8. विचार क्रांति के आदर्शवारी विचारधारा का प्रतिपादन करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए। 9. समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता शिक्षा के प्रचार के लिए हमें किस तरह अपना कर्तव्य पूरा करना होगा।
10. समाज के हित में विचार गोष्ठियों का आयोजन किस हद तक अपना महत्व रखता है।
कथाएं। 1. एक शिष्य दायां पैर दबाता दूसरा बायां।
संयोगवश गुरु ने करवट ली तो दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर चढ़ गया। बाएं पैर वाले शिष्य ने गुस्से में आकर डंडा उठाया और दाहिने पैर को पीटना प्रारंभ कर दिया। दूसरा शिष्य भला इसे कैसे सहन करता, उससे बाएं पैर की पिटाई शुरू कर दी। मना करते करते दोनों पैरों की अच्छी खासी धुनाई हो गई। गुरु ने कहा, मूर्खों देखते नहीं पैर दाएं बाएं हैं तो क्या है, तो वह मेरे ही शरीर के अंग।
पास ही खड़े अन्य संत ने अपने शिष्यों से कहा, तात मनुष्य शरीर की भांति संसार के सभी लोग ईश्वरीय सत्ता के अभिन्न अंग हैं, सबके हित का ध्यान रखना ही सच्ची आस्तिकता है। 2. अमेरिकन विद्वान बेंजामिन फ्रैंकलिन को अखबार निकालने के लिए $20 कम पड़ रहे थे। उन्होंने $20 एक मित्र से उधार लिए। अखबार अच्छी तरह चल निकला तो वे $20 वापस करने मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने कहा, फ्रैंकलिन जरूरतमंदों की सहायता पर समाज टिका हुआ है।
मैंने तुम्हें कर्ज नहीं दिया, यदि देना ही है तो आप यह $20 किसी निर्धन को दे दीजिए।
वैज्ञानिक ने ऐसे ही किया।
कहते हैं यह $20 अभी भी अमेरिकन में एक से दूसरे जरूरतमंद के पास पहुंचकर सहायता करते रहते हैं, इस धन को कोई पास नहीं रखता।
3. अणु वैज्ञानिक नील्स बोहर ने प्रतिज्ञा की कि वे अपनी बौद्धिक सामर्थ्य का उपयोग केवल मानव कल्याण में ही करेंगे। अभी प्रतिज्ञा किए कुछ ही दिन बीते थे कि उन्हें नाजी पकड़ ले गए और अणु अस्त्र बनाने का दबाव डालने लगे।
उन्होंने पहले तो प्रलोभन दिए, पर जब नील्स बोहर नहीं झुके तो उन्हें भूखा रखा, मारा, पीटा और मशीनों में बांधकर खिंचवाया, तक पर वे अपने प्रण से जरा भी विचलित न हुए।
अंत में मछुआरों ने उन्हें कोपेनहेगन से अमरीका पहुंचाया।
वहां वे आजीवन मानव की भलाई के काम में लगे रहे। 4. बेंजबुड बन नेताओं से समझौते के लिए भारत पधारे। गांधी जी से भेंट के दौरान उन्होंने व्यंग किया, आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, राजनीति में क्यों फंस गए।
गांधी जी बोले, धार्मिक व्यक्ति का अर्थ होता है अधर्म से लड़ने वाला, फिर वह अधर्म चाहे रहन सहन का हो या विचारों का अथवा राजनीति का। आज राजनीति अधर्म पर है, पहले उसे ठीक करेंगे, पीछे अपनी अन्य सामाजिक बुराइयां भी। बेंजबुड बन इस कथन से बहुत प्रभावित हुए। 5. श्रावस्ती में भयंकर अकाल पड़ा। निर्धन लोग भूख से मरने लगे। भगवान बुद्ध ने संपन्न व्यक्तियों को बुलाकर कहा, भूख पीड़ितों को बचाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए।
संपन्न व्यक्तियों की कमी न थी, पर कोई कह रहा था मेरा तो सब खर्च हो गया, कोई कह रहा था मुझे घाटा हो गया, फसल ही पैदा नहीं हुई आदि।
उस समय सुप्रिया नामक लड़की खड़ी हुई और बोली, मैं दूंगी सबको अन्न।
लोगों ने कहा, लड़की तू तो भीख मांगकर खाती है, दूसरों को क्या खिलाएगी। सुप्रिया ने कहा, हाँ मैं आज से इन पीड़ितों के लिए घर घर जाकर भीख मांग कर लाऊंगी, पर किसी को मरने न दूंगी।
उसकी बात सुनकर दर्शक स्तब्ध रह गए और सबने ही धन देना प्रारंभ कर दिया। सिक्स बम्बई में एक व्यापारी ने प्रसिद्ध जौहरी रामचंद्र से सौदा किया, पेशगी देकर माल सातवें दिन उठाने का वादा किया। लिखा पढ़ी हो गई, पर सातवें दिन तक भाव इतने बढ़ गए कि उसकी कीमत चुका सकना व्यापारी के लिए सारी संपत्ति बेचकर भी संभव न था।
वह डेल्ही जेल जाने की तैयारी में बैठा था, तभी रामचंद्र को इसका पता चला। वे खुद व्यापारी के घर गए और लिखा पढ़ी का कागज फाड़ते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे दूध पीना सिखाया है, खून पीना नहीं।
सेवन ईश्वर चंद्र विद्यासागर को शिक्षा विभाग में 500 मासिक की सर्विस मिल गई, पर पहले ही महीने 50 खर्च करके जब उनने 450 बचाकर उन्हें शिक्षा प्रसार कार्यों के लिए दे दिया तो एक अंग्रेज ने पूछा, वेतन आपकी सुख सुविधा के लिए मिलता है, फिर अपने लिए इतना कम खर्च क्यों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोले, महाशय
यह सारा समाज ही मेरा घर है, मुझे यार है मैंने कितने कष्ट उठाकर विद्या पाई है, अब मेरा यह कर्तव्य है कि मेरे जो भाई इस अभाव में पिछड़ रहे हैं
उनके लिए कुछ करूँ। वे अपनी कमाई आगे भी शिक्षा प्रसार में खर्च करते रहे।
आठ वैज्ञानिकों का अनुमान था कि रेडियम कैंसर का इलाज हो सकता है, पर इसके लिए प्रयोग की आवश्यकता थी, पर इस प्राण घातक प्रयोग के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इना रॉबर्ट्स ने सुना तो वे वैज्ञानिकों के पास गई और बोली, एक मेरे मर जाने से यदि संसार का भला हो सकता है तो मैं सहर्ष प्रस्तुत हूँ। उनके ही त्याग का फल है कि आज संसार के लाखों कैंसर रोगी इस इलाज से बच जाते हैं।
नाइन महर्षि दधीची की पैनी दृष्टि से इंद्र छिप न सके, फिर भी उन्होंने कहा, ब्राह्मण यह देवत्व की रक्षा का सवाल है, इसलिए मैं आत्मोत्सर्ग के लिए प्रस्तुत हूँ। यह कहकर उन्होंने देह से अपने प्राण निकाल लिए और अपनी हड्डियां वज्र बनाने हेतु दान कर दी। 20 सज्जनता व मधुर व्यवहार मनुष्यता की पहली शर्त। प्रश्न 1 मित्रों की संख्या बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है?
2 मनुष्य का वास्तविक बड़प्पन किसमें है?
3 कटु व्यवहार की कैसी प्रतिक्रिया होती है? 4 मनुष्यता का सच्चा स्वरूप किसमें है? 5 संभाषण में शिष्टाचार के नियम बताइए। 6 अपरिचित व्यक्ति से मिलने पर कैसा व्यवहार करना चाहिए? 7 बच्चों को शिष्टाचारी बनाने का उपाय क्या है?
8 जीवन की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होने का उपाय क्या है?
9 सज्जनता की सामान्य परिभाषा क्या है? 10 आदर्श जीवन के कौन कौन से गुण अपनाना अनिवार्य है? कथाएं 1 महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध दुर्वासा उन्हें शाप देने की तैयारी करने लगे। क्रोध किसी को भी अच्छा नहीं लगता, फिर भगवान ही को क्यों अच्छा लगता? उन्होंने अम्बरीश की रक्षा और दुर्वासा को अनुचित क्रोध करने का दंड देने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा।
दुर्वासा बड़े बड़े देवताओं की शरण गए, पर सबने यही कहा, क्रोधी व्यक्ति को पास रखना अपना हित करना है।
अंततः दुर्वासा ने अम्बरीश से क्षमा मांगी और तब कहीं सुदर्शन के कोप से बचे। दुर्वासा ऋषि थे, पर आवेशग्रस्तता के दुर्गुण ने उनकी भी यह दुर्गति करा दी। 2 एक जंगल में एक शेर रहता था, उसे अपनी शक्ति का बड़ा घमंड था। उसके त्रास से तंग आकर एक खरगोश ने उसे मार डालने का निश्चय किया। खरगोश ने जिस रास्ते से सिंह आया जाया करता वहीं एक छोटी सी गुफा बनाई जिनमें 2 दरवाजे रखे, एक दरवाजा तो पास ही था, दूसरा बहुत दूर जाकर निकलता था। शेर उधर से निकला तो खरगोश ने भीतर से गाली दी।
अहंकारी शेर तड़पा, पर उस नन्ही सी मांद में घुसना उसके बस की बात नहीं थी।
खरगोश उसे बार बार गाली देता, शेर गुस्से में भरा उसे मार डालने को बैठा रहा।
उधर खरगोश दूसरे रास्ते से निकलकर खाना खा आता और फिर मांद में आकर शेर को गाली देने लगता। अहंकारी शेर बदले की भावना से वहां सो हटा नहीं और तड़प तड़प कर वहीं मर गया।
3 डॉक्टर 0 महेंद्रनाथ सरकार अपनी कार से कहीं जा रहे थे। मार्ग में परमहंस स्वामी रामकृष्ण का आश्रम पड़ता था। जब वे पास से निकले तो एक व्यक्ति को शांतचित बैठे देखा। उन्होंने समझा माली है, सो उससे फूल तोड़कर लाने को कहा। उस व्यक्ति ने बड़ी प्रसन्नता के साथ फूल तोड़कर दे दिए। डॉक्टर 0 महेंद्रनाथ चले गए।
दूसरे दिन वे परमहंस से मिलने गए तो यह देखकर अवाक रह गए कि जिस व्यक्ति ने उन्हें बिना किसी अभिमान के आदर पूर्वक फूल दिए थे वह माली नहीं स्वयं रामकृष्ण परमहंस ही थे।
4 सुप्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र बड़े उदार थे, यहाँ तक कि दूसरों की सेवा में ही वे कंगाल हो गए। एक दिन तो उनके पास आवश्यक पत्र भेजने को भी पैसे न बचे, तब एक मित्र ने 5 रुपये दिए। कुछ दिन पीछे भारतेंदु जी की आर्थिक स्थिति फिर संभल गई। वे उन मित्र को जब भी आते जेब में 5 रुपये रख देते। एक दिन मित्र महोदय बहुत नाराज हुए तो भारतेंदु जी भरे हृदय से बोले, आपने गाढ़े समय मेरी सहायता की थी, उस ऋण से तो मैं कभी भी उऋण नहीं हो सकता। 5 आश्चर्य है द्रौपदी। सत्यभामा ने एक दिन पूछा, तुम 5 पतियों को एक साथ वश में रखती हो और मैं कृष्ण अकेले को ही संतुष्ट नहीं कर पाती।
द्रौपदी बोली, बहन पति तो निस्वार्थ और अहंकार रहित प्रेम से संतुष्ट होते हैं, मेरे जीवन का इतना ही रहस्य है, मैं अपने सभी पतियों को हृदय से प्रेम करती हूँ, अहंकार दर्शन नहीं।
सत्यभामा को अपनी भूल का पता चल गया। उस दिन के बाद फिर उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। 6 महाभारत युद्ध का पहला दिन दोनों सेनाएं संग्राम के लिए आमने सामने आ डटी। युद्ध शुरू होने को ही था कि युधिष्ठिर रथ से उतरकर कौरवों की सेना में घुस गए और जाकर गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म आदि को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। इधर चिंतित अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, भगवान महाराज, युधिष्ठिर ने गुरुजनों के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त कर आधा महाभारत जीत लिया, आधा शेष रहा, उसे जीतने के लिए अब तुम सब युद्ध प्रारंभ करो।
सात ऋषि कुमार सहस्रपाद से दूसरों को उपहास करने में बड़ा आनंद आता। लोगों ने समझाया भी, विनोद जब तक निर्दोष हो तभी तक ठीक रहता है, किसी को बुरा लगे ऐसा उपहास नहीं करना चाहिए।
सहस्रपाद ने सुनी अनसुनी कर दी।
आश्रम में एक और ऋषि बालक कदर्ब रहते थे, वह बड़े तपस्वी नेक और सुशील थे, पर उन्हें सर्प से बड़ा डर लगता था।
एक दिन सहस्रपाद ने घास का सर्प बनाकर उन्हें डरा दिया। कदर्ब इतने डर गए कि मूर्छित होकर गिर पड़े।
होश आने पर उन्होंने सहस्रपाद को शाप दे दिया, जिससे उन्हें सर्प की योनि में जाना पड़ा। 8 जापान के सम्राट हिरोहितों के 19 वर्षीय पौत्र हिमा शिकुनी ने ओलंपिक खेलों के दौरान अपना नाम खिलाड़ियों को खाना खिलाने वाले बैरों में लिखाया। राज्य परिवार के लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो राजकुमार ने उत्तर दिया, सेवा और सज्जनता द्वारा दूसरों को जो प्रेरणा दी जा सकती है वह पद और प्रतिष्ठा द्वारा नहीं दी जा सकती।
21 साहस जुटाएं, औचित्य अपनाएं। प्रश्न:
1 भय हमारी प्रगति में किस प्रकार बाधक है? 2 क्या भय की निरर्थक कल्पना करके मनुष्य अपना अहित कर रहा है? 3 अवरोध हमें किस प्रकार सज्जन बनाते हैं? 4 प्रतिकूलता को अनुकूलता, निर्धनता को संपन्नता में बदलने के लिए कौन से प्रयत्न करने पड़ते हैं? 5 हिम्मत वाले की सभी कोई सहायता करते हैं किस तरह?
6 मनुष्य क्या प्रयत्न न करे तो ओछा का ओछा बना रहेगा?
7 अनुचित कही जाने वाली क्या दुष्प्रथाएं हमारे पीछे लगी हैं? 8 अवांछनीय स्थितियां किस तरह बदली जा सकती हैं? 9 हिम्मत क्या है, इसे अपनाने से क्या लाभ होते हैं?
10 किस दुश्मन ने हमारी मनोभूमि का ढांचा ही बदल दिया है? कथाएं: 1 अकबर के सामने एक मुकदमा आया।
एक पक्ष कहता था, जो ईश्वर की शरण में आता है ईश्वर उसी की सहायता करता है। दूसरा पक्ष कहता था, जो अपनी सहायता आप करते हैं ईश्वर भी उसी की सहायता करता है। बीरबल से उत्तर मांगा गया, इस पर उन्होंने कहा,
आपुना रक्षा कर से ताको राखनहार, जो आपनी रक्षा करे सो राखे करता।
अकबर की समझ में बात नहीं आई।
कुछ दिन पीछे मराठों से युद्ध हुआ,
उसमें एक सेना की कमान एक ऐसे सेनापति को दी गई जो ईश्वर पर विश्वास करता था, उसे कोई अस्त्र नहीं दिया गया पर दूसरे को अस्त्र देकर भेजा गया।
पहली टुकड़ा तो हार कर वापस लौटी जबकि अपनी सहायता आप करने वाला सेनापति विजयी होकर लौटा। 2 श्रावस्ती का मृगारी श्रेष्ठ धन की अशना में ही डूबा रहता। एक दिन भोजन परोसकर उसकी पुत्र वधु ने पूछा, तात भोजन कैसा है, कोई त्रुटि तो नहीं? मृगारी श्रेष्ठ ने कहा, आयुष्यमती तुमने मुझे सदैव ताजा और स्वादिष्ट भोजन दिया है।
इस पर पुत्र वधु ने हंसकर कहा, तात यही तो आपकी भूल है, मैं तो तुम्हें सदैव बासी भोजन देती रही। इस पर मृगारी श्रेष्ठ चौंके और बोले, धन की कमाई के कारण मैंने तो इधर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पुत्र वधु ने कहा, आर्य इसी तरह मनुष्य का जीवन निरर्थक कार्यों में बीत जाता है और सच्चाई का पता नहीं चल पाता।
मृगारी श्रेष्ठ ने भूल मानी और उस दिन से धर्म कर्म में रुचि लेने लगा।
3 गोपाल कृष्ण गोखले को गणित में सबसे अधिक नंबर पाने के लिए इनाम दिया गया। इनाम पाकर उन्हें प्रसन्न होना चाहिए था पर वे रोने लगे और इनाम वापस करने लगे तो अध्यापक ने पूछा, गोखले रो क्यों रहे हो? गोखले ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, यह इनाम इन्हें मिलना चाहिए, मैंने तो सवाल इनसे नकल किए। अध्यापक ने इनाम उन्हीं को सौंपते हुए कहा, अब यही इनाम तुम्हारी सच्चाई के लिए दिया जा रहा है।
4 जो भी शिष्य आता यही विश्वास दिलाता, भगवान धर्म की स्थापना और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष से हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। शिवजी को उतने से संतोष नहीं हुआ, परीक्षा के लिए वे शिष्यों के सामने ही अकारण पार्वती जी को भला बुरा कहने लगे,
पर शिष्यों में से एक ने भी उनका प्रतिरोध नहीं किया।
तब शिष्यों के मध्य खड़े परशुराम जी आगे बढ़े और शिवजी के सिर पर फरसा चला ही तो दिया। अन्य शिष्य परशुराम जी को बुरा भला कहने लगे तो शिवजी बोले, बस करो, देख ली तुम्हारी निष्ठा, जो हिम्मत और सच्चाई परशुराम ने दिखाई तुम में से उसका एक को भी तो साहस नहीं हुआ।
5 रवींद्रनाथ टैगोर एक परीक्षा में कम नंबरों से पास हुए। दूसरी परीक्षा के लिए उन्होंने जो तोड़ श्रम किया और परीक्षा में अच्छे नंबर पाए। शिक्षक को संदेह हुआ कि श्री टैगोर ने कहीं नकल तो नहीं की। इस पर टैगोर ने कहा, श्रीमान मेरी योग्यता अविश्वस्त रह जाए यह मैं हरगिज नहीं चाहता।
उन्होंने फिर से परीक्षा दी और अपनी योग्यता प्रमाणित कर दिखाई। 22 आलस्य त्यागे सुसंपन्न बने। प्रश्न:
एक मानव जीवन की महान संभावनाएं किसमें छिपी हैं?
2. विजय लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताइए.
3. सफलता की कुंजी क्या है?
4. उज्ज्वल भविष्य कैसे बन सकता है? 5. मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उनसे कैसे बचा जाए? 6. महान बनने का सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है?
7. प्रगति का रहस्य क्या है?
8. निरंतर प्रगति एवं उन्नति का गुरु मंत्र क्या है? 9. सिद्ध कीजिए कि आलसी हरामखोर या परिश्रमी प्रतिष्ठावान होता है. 10. समृद्ध एवं समुन्नत बनने का रहस्य क्या है? कथाएं. 1. स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अमरीका के सिपेटल नगर में घूम रहे थे. एक लड़का अखबार बेच रहा था.
स्वामी जी ने अखबार खरीदते समय उसकी वेशभूषा देखकर कहा, तुम तो किसी संपन्न घर के से लगते हो, फिर अखबार क्यों बेचते हो?
लड़के ने कहा, श्रीमान जी, मेरे घर वाले संपन्न हैं, क्या इसका मतलब यह है मुझे परिश्रम नहीं करना चाहिए?
मैंने अपने ही हाथों से कमाकर $50 बैंक में जमा किए हैं. स्वामी जी को कहते ही बना कि ऐसे न होते तो तुम लोग इतने समृद्ध कैसे हो जाते?
2. तितली हंसकर बोली, मधुमक्खी बहन, तुम्हारा जीवन भी व्यर्थ है, दिन भर काम से ही फुर्सत नहीं. मेरी ओर तो देखो कैसे दुनिया का आनंद ले रही हूँ. मधुमक्खी कुछ न बोली, दिन भर काम में लगी रही. शाम को दोनों घर लौटी तो मधुमक्खी के पास मधु का ढेर जमा था, पर तितली खाली हाथ थी. 3. दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन के सिलसिले में एक सत्याग्रही को जोहान्सबर्ग की जेल में बंद कर दिया गया.
जेल में जो काम दिया जाता अन्य साथी तो धींगा मुश्ती करते, पर वह वहां भी पूरा परिश्रम करते. कोई काम न मिलता तो वे पुस्तकें ही पढ़ा करते. एक बार गवर्नर का मुआयना हुआ, उसने पूछा, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? वे बोले, और तो सब ठीक है, पर यहाँ पूरी तरह काम नहीं मिलता. हैरान गवर्नर ने पूछा, यहाँ दूसरे लोग काम से जी चुराते हैं, तब भी आप काम क्यों करना चाहते हैं?
उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि कहीं मेरी जीवनी शक्ति नष्ट न हो जाए. गवर्नर बड़ा प्रभावित हुआ. यह व्यक्ति गांधी जी थे. 4. यूनान के महापुरुष डायोजनीस का नौकर बिना सूचना दिए कहीं भाग गया.
तब वे अपने घर की झाड़ू बुहारी से लेकर कपड़े धोने का काम स्वयं करने लगे.
एक दिन एक मित्र ने कहा, आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं, नौकर को ढूंढ मंगाए.
डायोजनीस हंसकर बोले, भाई, मेरा नौकर मेरे बिना रहता है और मैं उसके बिना न रह पाऊं, यह शर्म की बात है न.
मुझे दासानुदास बनना स्वीकार नहीं. 5. शैतान का संन्यास लेना सबको आश्चर्यजनक लग रहा था. उधर शैतान जी अपनी नशेबाजी, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि संपत्तियों का दान कर रहे थे.
एक डिबिया बची शैतान ने कुछ सोचकर उसे जेब में रख लिया. इसमें क्या है?
एक मनुष्य के यह पूछने पर शैतान ने बताया, इसमें वह वस्तु है जिससे मैं अपनी सारी संपत्ति और विशेषताएं पुनः प्राप्त कर सकता हूँ.
लेकिन बहुत आग्रह करने पर भी वह उसे दिखा नहीं रहा था. तभी डिबिया जेब से खिसक गई और गिरकर खुल गई. लोगों ने देखा उसके भीतर आलस्य बैठा हुआ था. 6. जापान की एक अमरीकी फर्म के मालिक ने जापानियों को खुश करने के लिए सप्ताह में एक दिन की छुट्टी बढ़ा दी. इस पर जापानियों ने सत्याग्रह कर दिया. मालिक बड़ा हैरान हुआ. उसने सत्याग्रह प्रमुखों से पूछा, भाई, बात क्या है, क्यों सत्याग्रह कर रहे हो? एक युवक बोला, एक दिन की छुट्टी बढ़ाकर आप हमारी परिश्रम की आदत बिगाड़ना चाहते हैं और हम पर अपव्यय मटरगस्ती की बुराइयां लादना चाहते हैं.
आखिर एक दिन की छुट्टी का आदेश फर्म मालिक को वापस ही लेना पड़ा. 23. समय का सदुपयोग सफलता के लिए अमोघ साधन. प्रश्न. 1. मनुष्य जीवन की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु क्या है?
2. हर क्षेत्र में सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचने का रहस्य क्या है? 3. जीवन में एकीकरण एवं केंद्रीयकरण की आवश्यकता क्यों है?
4. थोड़े समय में अभीष्ट प्रगति करने का मूल मंत्र क्या है? 5. एंडरसन ने संसार की सभी भाषा कैसे सीखी?
6. क्या कारण है कि कुछ लोग जीवन में महान बन जाते हैं जबकि उन्हीं परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति सामान्य बने रहते हैं? 7. नियमित एवं निरंतर काम करने से क्या लाभ है?
8. आदर्श दिनचर्या बनाइए.
9. लगन एवं मनोयोग से ही बड़े काम होते हैं, सिद्ध करें. 10. फुर्सत न मिलने का बहाना बेबुनियाद कैसे है, सिद्ध करें.
कथाएं. 1. तृष्णापल्ली के एक विद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों की परीक्षा ली गई. एक छात्र के प्रश्न पत्र देखकर परीक्षक ने उसे इकट्ठे 2 कक्षाओं में पदोन्नति की सिफारिश की,
पर उससे इनकार करते हुए लड़के ने कहा, श्रीमान जी,
मैं छलांग नहीं लगाना चाहता, क्रमवार उन्नति ही करना चाहता हूँ. स्वल्प श्रम से मिलने वाली सफलता को ठुकराने वाला यह बालक ही भारत का महान वैज्ञानिक श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से प्रसिद्ध हुआ. 2. एक लड़के ने एक धनी व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया और उद्योग करने लगा. तभी एक दिन उसने एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ का गीत सुना. अब एक कुशल संगीतज्ञ बनने के लिए उसने उद्योग छोड़कर संगीत का अभ्यास प्रारंभ कर दिया. फिर एक लेखक से भट हुई तो उसे पत्रकारिता में सबसे अधिक यश और सम्मान मानकर लेखन शुरू कर दिया. 24 वर्ष तक 24 धंधे बदले और वह युवक कुछ भी न सीख सका। हाँ, वानप्रस्थ का समय अवश्य आ गया, पर उससे आत्म कल्याण की साधना भी न करते बनी।
3. एक राजा एक साधु के पास जाकर बोला, महाराज, किसी काम के लिए उपयुक्त समय कौन सा है?
यह कैसे जाना जाए? साधु क्यारी गोड़ते रहे, बोले कुछ नहीं। राजा दूसरे दिन भी और वही प्रश्न किया। साधु फिर भी कुछ न बोलकर पौधे लगाते रहे। शाम को राजा फिर साधु के पास जाकर बोले, महाराज, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पौधों को पानी लगाते हुए साधु बोले, पहले भी उत्तर दिया, अभी भी दे रहा हूँ, तुम समझते नहीं तो क्या करूँ?
राजा ने समझा, जो काम सामने है उसे अभी पूरा करना सबसे अच्छा अवसर है।
4. चार्ल्स डिकेंस को निबंध लिखने का शौक था।
वे उन्हें लिखते और फाड़ देते, इसी बीच उन्हें कर्ज न चुका सकने के कारण जेल हो गई।
जेल में सब सो जाते तब वे चुपचाप खिलते लिखने का अभ्यास उन्होंने नहीं छोड़ा। एक दिन किसी ने इनका निबंध पढ़ा तो वह बहुत अच्छा लगा, उसे एक पत्रिका में छपने भेज दिया। संपादक ने लेखक का नाम अज्ञात होने पर भी उस कलम की भूरी भूरी प्रशंसा की। फलतः डिकेंस का हौसला बढ़ गया, अब वे प्रकाश में आ गए और विपुल धन तथा यश अर्जित कर दिखा दिया। समय का सदुपयोग कितनी कीमती वस्तु है। 5. एक लड़के को पढ़ने को बहुत कहा जाता पर वह ध्यान ही नहीं देता, किंतु एक दिन अकस्मात दुर्घटना हो गई, उसमें एक टांग टूट गई। अब इस लड़के के प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त करने आता तो वह उससे जल्दी ही छुटकारा लेकर पढ़ने में लगा रहता। फिर उसने लेखनी उठाई तो विश्वविख्यात साहित्यकार H.G. वेल्स के नाम से विख्यात हुआ।
व्यापार में हानि, उद्योग में घाटा, मुकदमे में हार और लगातार 4-5 चुनावों के बाद भी जब अब्राहम लिंकन फिर सीनेट के चुनाव में खड़े हुए तो एक व्यक्ति ने पूछा, जब आपको कोई सफलता नहीं मिलती तो क्यों परेशान होते हैं? लिंकन बोले, जब समय नहीं थकता तो हम अपने प्रयत्न से क्यों थके?
लिंकन चुनाव तो वह भी हार गए, पर एक दिन उन्हें अमरीका का राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला। 6. एक व्यक्ति सुकरात के पास आता और कभी कहता, कल से दुकान शुरू कर रहा हूँ, कभी कहता खेती करूंगा, कभी समुद्री व्यापार की बात कहता और सफलता का आशीर्वाद मांगता।
सुकरात हंस देते, कुछ कहते नहीं।
एक दिन वह मनुष्य सामने से फलों की टोकरी लिए आता दिखाई दिया। सुकरात दौड़कर गए और आशीर्वाद देकर बोले, भाई, तुम खूब उन्नति करोगे। उस आदमी ने पूछा, मैं जिस आशीर्वाद के लिए पहले कई बार आपके पास गया उसे आज आप खुद देने आए? सुकरात बोले, हाँ भाई, आज तुमने समय की पहचान जो कर ली। 7. क्यूबा के एक गांव में केवल एक ही युवक साक्षर था, उसे भी प्रतिदिन शहर जाना पड़ता था, पर लगन के धनी इस युवक ने शहर से लौटकर प्रतिदिन एक घंटा प्रौढ़ शिक्षण का क्रम बनाया और 10 वर्ष में 500 आबादी वाले सारे गांव को साक्षर ही नहीं विचारशील लोगों का गांव बना दिया। 24. अवरोध हमें अधीर न बनाने पाए। प्रश्न
1. क्या आप बता सकते हैं कि क्यों ईश्वर ने सुविधा के साथ असुविधा और संतोष के साथ असंतोष को बनाया है?
2. केवल सुविधा संतोष अनुकूलता ही यदि बनाए गए होते तो उससे हमारी क्या हानि होती? 3. प्रगति का मार्ग संघर्ष होता है, सिद्ध कीजिए।
4. क्या हम किसी महान कार्य को कर रहे हैं और यदि कार्य में कोई रुकावटें आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए?
5. जिन्हें केवल सफलता, केवल लाभ अनुकूलता ही चाहिए, क्या वे इस संघर्षशील संसार में अपने को दृढ़ बनाए नहीं रख सकते? 6. चिंतित व्यक्ति और साहसी व्यक्ति में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए।
7. क्या आप ऐसे कोई उदाहरण बता सकते हैं किसी व्यक्ति के सामने कई बार अवरोध आए पर वह आखिर में बराबर जीता हो? 8. इस संसार में संतोष और आनंद का जीवन कौन व्यतीत कर सकते हैं?
9. सफलता की बड़ी आशाएं रखना किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा? कथाएं 1. श्री रफी अहमद किदवई का अपने एक मित्र से राजनीतिक विरोध हो गया। उन्हीं दिनों उन सज्जन की पुत्री का विवाह था। उन्होंने सबको निमंत्रण दिया पर किदवई जी को जानबूझकर निमंत्रण न दिया। फिर भी किदवई जी विवाह में पहुंचे और कन्या को आशीर्वाद दिया। यह देखकर वह सज्जन आत्मग्लानी और पश्चाताप से भर गए। उन्होंने किदवई जी से निमंत्रण न देने की भूल पर क्षमा मांगी तो किदवई जी बोले, अपनी बेटी के विवाह पर भी कहीं निमंत्रण की जरूरत होती है।
इस पर तो उन सज्जन का हृदय पानी पानी हो गया। इस घटन से आपसी मनमुटाव भी दूर हो गया।
बिहार का एक किसान गांधी जी के दर्शन करना चाहता था।
तभी उसने सुना कि गांधी जी बेतिया आ रहे हैं। वह रेलगाड़ी से बेतिया चल पड़ा।
जिस डिब्बे में वह घुसा दुबला पतला व्यक्ति सीट पर लेटा हुआ था।
यद्यपि डिब्बे में बहुत जगह खाली पड़ी थी, उठाते हुए बोला, ऐसे लेटे हो जैसे गाड़ी तुम्हारे बाप की हो। साथ से इशारा करके सबको चुप कर दिया।
वह व्यक्ति वहीं से बगल में बैठकर गाने लगा, धन गांधी जी महाराज, दुखियों के दुख मिटाने वाले। सब लोग मुस्करा रहे थे, गाड़ी चल रही थी।
बेतिया आया तो सब लोग गांधी जी की जय कहकर उसी डिब्बे में घुस पड़े और उन सज्जन को फूल माला पहनाने लगे। किसान हक्का बक्का रह गया और गांधी जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। गांधी जी बोले, तुम्हारा कोई दोष नहीं, मुझे ही नहीं लेटना चाहिए था।
3. श्री विश्वनाथ शास्त्री कुछ प्रतिक्रियावादी ब्राह्मणों की आशंकाओं व तर्कों का उत्तर दे रहे थे। उनके अकाट्य प्रमाणों के आगे ब्राह्मण टिक नहीं पा रहे थे। तभी प्रतिपक्षी दल के एक सदस्य ने शास्त्री जी की नाक में सुंघनी घुसेर दी। शास्त्री जी तनिक भी बिना उत्तेजित न हुए, नाक रगड़ी और बोले, थोड़ी देर के लिए यह प्रहसन भी खूब अच्छा रहा, अब हमें फिर मूल विषय पर आ जाना चाहिए। शास्त्री जी की इस सहनशीलता के कारण ब्राह्मणों ने अपनी हार मान ली। 4. डॉक्टर जीरो राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। घर के प्रबंधक श्री महेंद्र प्रसाद का देहांत हो जाने पर घर की देखरेख करने वाला न रह गया।
कर्ज इतना बढ़ गया कि घर के शाल दुशाले बिक जाने पर भी सारा ऋण 14 वर्ष में भर पाए हो पाया, तब भी वे देश सेवा के कार्य से विमुख नहीं हुए। 5. एक दिन क्रोध गुस्सा होकर बोला, यह संसार बहुत खराब हो गया है, इसका नाश करके छोड़ूंगा। धीरे से शांति बोली, तुम्हें जल्दबाजी है इसलिए ऐसा सोचते हो। जो लोग मानते हैं कि भगवान की सृष्टि हमेशा बनी रहेगी, वे न तो ऐसा क्रोध करते हैं न ऐसी जल्दबाजी।
6. पांडव अज्ञातवास कर रहे थे। एक दिन उन्हें बेहद प्यास लगी, पानी के लिए नकुल को भेजा गया। नकुल एक सरोवर के पास पहुंचे जिसमें एक यक्ष रहता था। यक्ष वहां जो भी पहुंचता उसी से कुछ प्रश्न पूछता,
जो प्रश्नों का उत्तर नहीं देता वह पानी नहीं पी सकता था।
यक्ष ने नकुल से भी प्रश्न किया पर नकुल बेहद प्यासे थे, वे अधीर हो उठे और जैसे ही पानी पीने के लिए झुके शापवश अचेत होकर गिर पड़े। यही दशा सहदेव, भीम और अर्जुन की भी हुई। अंत में युधिष्ठिर गए और शांतिपूर्वक यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया, स्वयं पानी पिया, भाइयों को जिलाया और द्रौपदी के लिए भी जल ले आए।
7. कर्रिये ने सभी भेड़ों को तो बाड़े में बंद कर दिया, पर जिस बच्ची भेड़ को वह कंधे पर उठा कर लाया था उसे नहलाया धुलाया हरी घास खाने को दी।
पास की चौपाल में शिष्यों सहित ईसा मसीह बैठे थे।
उन्होंने पूछा, तात तुमने और भेड़ों को तो बंद कर दिया, इसी बच्चे से इतना प्यार क्यों? गर्रिया बोला, महाराज यह रोज भटक जाता है, इसे इसलिए इतना प्यार देता हूँ ताकि वह फिर न भटक जाए। ईसा मसीह ने शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, तात प्यार के अभाव में ही लोग भटकते हैं और भटके हुए लोग प्यार से ही सीधे रास्ते पर आते हैं, यह तुम इस गर्रिये से सीखो। 25. आवेशग्रस्त न हो, शांति और विवेक से काम लें।
प्रश्न:
एक शरीर में बुखार आने पर क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा उससे क्या हानियां होती हैं? 2. मस्तिष्क को बुखार आ गया, ऐसा हम कब कह सकते हैं? 3. आवेशित होने के कारण क्या हैं? 4. आवेशित होने से हम में क्या परिवर्तन हो जाते हैं तथा इससे क्या हानियां होती हैं?
5. क्या आवेशित व्यक्ति अपने स्वतः को भी पहुंचाता है? यदि हाँ तो किस तरह?
6. हमें अपना स्वभाव संतुलित बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? 7. दूरदर्शी और विवेकवान व्यक्ति की पहचान क्या है? 8. सामने वाले व्यक्ति से हमें क्रोध न करके किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? 9. क्रोध करने से हमें शारीरिक कठिनाइयां क्यों होती हैं?
कथाएं: 1. भगवान बुद्ध एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां अधिकांश प्रतिक्रियावादी ब्राह्मण रहते थे। एक आदमी को पता चला तो वह बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें गालियां बकने लगा।
बुद्ध दूसरे लोगों से बात करते रहे, बड़ी देर तक गाली बककर वह ब्राह्मण चुप हो गया। तो बुद्ध ने पूछा, महोदय आप किसी को कुछ देना चाहें और वह न ले तो क्या आप हर वस्तु फेंक देंगे?
ब्राह्मण बोला नहीं। तब बुद्ध भगवान शांति और निश्चिंतता से बोले, तो फिर मैं आपकी गालियां स्वीकार नहीं करता। 2. बंगाल में कृष्ण नगर राज्य के महाराज ने श्री ताराकांत की योग्यता व ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें अपना सचिव नियुक्त किया। एक दिन राजा साहब किसी आवश्यक काम से बड़े सवेरे स्वयं ही राय साहब के घर पहुंचे।
उन्होंने जाकर देखा कि उनका नौकर तो पलंग पर सोया है, खुद राय साहब नीचे जमीन में बिछी चटाई पर। दृष्टता के लिए वे नौकर को जगाकर डांटने लगे तो राय साहब की नींद टूट गई। उन्होंने कहा, महाराज देर तक काम करने से थक कर यह गरीब मेरे बिस्तर पर सो गया तो क्या हुआ? राजा साहब राय साहब की शांतचित्तता से प्रभावित हुए बिना न रह सके।
3. आग बोली, मूर्ख पानी यहाँ से हट नहीं तो जलाकर नष्ट कर दूंगी।
पानी कुछ नहीं बोला, शांतचित्त अपने काम से लगा रहा।
इस पर अग्नि और भी आग बबूला होकर झपटी पानी से टकराकर आप ही नष्ट हो गई। यह है आवेशग्रस्त होने का परिणाम। 4. एक व्यक्ति आया और शेख शादी से कहने लगा, श्रीमान जी अमुक व्यक्ति आपको गाली दे रहा था।
इस पर शेख शादी बिना किसी उत्तेजना या आवेश के बोले, श्रीमान जी शत्रु बुरा न कहेगा तो क्या अच्छा कहेगा, पर आप तो मित्र होकर मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रहे हैं।
अपने दोष दर्शन पर वह व्यक्ति बड़ा लज्जित हुआ।
5. एक व्यक्ति महावीर स्वामी के पास आया और परीक्षा के तौर पर उन्हें अपशब्द कहने लगा ताकि उनको क्रोध आ जाए।
जितनी देर वह अपशब्द कहता रहा जिनेंद्र चुप रहे। जैसे ही चुप हुआ उन्होंने कहा, अबू साव पहले भोजन कर ले ताकि आपका चित हल्का हो जाए। 6. रावण दुर्वचन बोल रहा था तब तक राम चुपचाप खड़े रहे।
विभीषण ने कहा, भगवान आप शस्त्र प्रहार क्यों नहीं करते?
राम बोले, क्षत्रिय मृतकों पर शस्त्र प्रहार नहीं करते, लेकिन रावण तो जीवित है। भगवान विभीषण बोले।
इस पर राम ने हंसकर उत्तर दिया, आवेश ग्रस्त मनुष्य और मृतक में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उस समय भी मनुष्य मृत्यु के समान ही ज्ञान शून्य हो जाता है।
7. मोहम्मद साहब युद्ध में एक योद्धा से भिड़े थे, उसे पटक कर वे उसका सिर काटना ही चाहते थे कि उसने गाली दे दी। मोहम्मद साहब तलवार को मियान में कर खड़े हो गए।
उनके एक सिपाही ने पूछा, आपने उसे मारा क्यों नहीं? इस पर मोहम्मद साहब बोले, इसने गाली दी तब मुझे क्रोध आ गया, उस समय अपने आवेश को ही मारना आवश्यक हो गया, क्योंकि वह अपना घोर शत्रु है।
26. विचार शक्ति का महत्व समझें और सदुपयोग करें। प्रश्न 1. मनुष्य का विकास किस बात पर निर्भर है? 2. विचार धन से भी बड़ी शक्ति है, सिद्ध करो।
3. कर्तृत्व की प्रेरणा कहाँ से आती है? 4. मनुष्य शरीर का जादू किसे कहते हैं, क्यों?
5. विचार शक्ति का आध्यात्मिकता से क्या संबंध है?
6. विचारों की परख किस तरह की जाए और उन्हें कैसे सुधारा जाए? 7. आत्मलोचन क्यों आवश्यक है? 8. बुरे विचारों से किस तरह बचा जा सकता है? विचारों के उत्पादन का स्रोत क्या है?
9. विचारों की भूल का प्रायश्चित परिमार्जन कैसे किया जाए? कथाएं 1. एक तहसीलदार देखने में तो बदसूरत था, पर उसकी बौद्धिक क्षमता असाधारण थी। एक दिन एक कलेक्टर ने व्यंग करते हुए कहा, जिस समय भगवान के यहाँ सुंदरता बढ़ रही थी,
उस समय आप कहते थे?
तहसीलदार ने कहा, जहाँ बुद्धि बढ़ रही थी वहाँ।
कलेक्टर इस उत्तर से बहुत लज्जित हो गया।
2. एक संत के पास जाकर एक जिज्ञासु ने कहा, महात्मन, बुरे विचार मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, कोई उपाय बताइए। साधु बोला, अपनी स्त्री से जाकर पूछो। वह मनुष्य घर लौटा तो देखा स्त्री गोबर से घर की लिपाई कर रही है।
आदमी ने पूछा, गंदगी दूर करने के लिए? मनुष्य यह उत्तर सुनकर समझ गया, विचारों की गंदगी दूर करने के लिए स्वस्थ विचारों को मस्तिष्क में भरना आवश्यक है।
3. अतिज्वर से तप रहे शरीर वाले एक बीमार मनुष्य ने देखा, आग का एक टुकड़ा पानी में गिरकर बुझ गया। हाथ डालकर देखा तो आग बुझ गई थी, कोयला ठंडा पड़ गया था।
उसने स्त्री से कहकर एक टब भरवाया और जाकर खुद उसी में बैठ गया।
ठंड के कारण सन्निपात हो गया।
वैद्य ने आकर देखा और सारी बात मालूम हुई तो कहा, गुण कर्म और स्वभाव की परख किए बिना जो निर्णय लिए जाते हैं वह ऐसे ही संकटपूर्ण होते हैं।
4. बंदर नदी में तैर रहा था, तभी मगर ने उसकी टांग पकड़ ली।
बंदर हंसा और बोला, बहुत खूब मगर जी, लकड़ी का ढूंढ पकड़ कर सोच रहे हो, मैंने बंदर पकड़ लिया।
मगर ने अपनी बेवकूफी समझकर पांव छोड़ गया।
जो विपत्ति में धैर्य रखकर विचार करते हैं वह की संकटों से भी पार पा लेते हैं। 5. एक घर में चोर घुसे और गृहस्थी को मार मार कर पूछने लगे, तुम्हारा खजाना कहाँ है? घर का मालिक पिट रहा था और तरह तरह की अनुनय विनय कर रहा था। यह देखकर उसकी बुद्धिमान स्त्री बोली, आओ तुम्हें मैं खजाना दिखाती हूँ। यह कहकर वह उन्हें तहखाने में लग गई। वहां पहुंचकर बोली, अरे चाबी तो ऊपर ही रह गई।
पुलिस को बुलाकर उसने चोरों को पकड़वा दिया।
पुलिस वालों ने संकट में भी धैर्य और बुद्धि से काम लेने से स्त्री के गुण की बड़ी प्रशंसा सा की। 6. एक बंदर पकड़ में नहीं आ रहा था।
अंत में एक मदारी ने एक युक्ति निकाली, उसने एक संकरे मुंह का घड़ा लिया और उसमें बंदर को दिखा दिखाकर तमाम रोटियां भर दी और घड़े को खुला छोड़कर आप छिपकर बैठ गया। बंदर ने आकर घड़े में हाथ डाला और मुट्ठी भर रोटी पकड़कर हाथ निकालना चाहा तो हाथ घड़े के मुंह से बाहर न निकला। बंदर इसी तरह खींच खींच कर हाथ निकालने का प्रयत्न करता, न निकलने पर अपने ही हाथ को चबाता रहा।
थक गया तो मदारी ने आकर पकड़ लिया।
यह था विचारशीलता और अबुद्धिमत्ता का अंतर। 27. आरोग्य रक्षा के लिए संतुलन आवश्यक है। प्रश्न 1. स्वास्थ्य की सुरक्षा के संबंध में हमें सावधानी बरतना चाहिए।
2. बीमारी और कमजोरी से अपनी रक्षा कौन कर पाता है?
3. आराम तलबी एक अभिशाप है, सिद्ध कीजिए। 4. सार्वजनिक स्वास्थ्य रोज रोज गिरते जाने के कारण क्या हैं? 5. स्वास्थ्य रक्षा का नितांत आवश्यकता क्यों है?
6. जिस दिन से शारीरिक श्रम का महत्व हमारी समझ में आ जाएगी हमें क्या लाभ होगा? 7. मेहनत न करने का दंड मनुष्य किस प्रकार से चुकाता है? 8. स्वास्थ्य रक्षा के लिए मनुष्य और स्त्रियों को क्या क्या शारीरिक श्रम करना चाहिए?
9. हमारे मनोविकारों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? 10. स्वास्थ्य रक्षा के लिए हमें मानसिक रूप से क्या प्रयत्न करना चाहिए? कथाएं 1. बापू ने अपनी सारी संपत्ति सार्वजनिक उपयोग के लिए दान कर दी। इन्हीं दिनों गोकी की बहन की एकमात्र पुत्री भी विधवा हो गई। वे खुद भी विधवा थीं और गांधीजी की आश्रिता थीं। उन्होंने गांधीजी को पत्र लिखा, अब तो उदर पोषण के लिए पड़ोसियों का अनाज पीसना पड़ता है,
कोई उपाय बताइए जिससे हम अपना और अपनी पुत्री का पेट पाल सकें।
गांधीजी ने उत्तर में लिखा, किसी पड़ोसी की चक्की मत पीसो, यहीं आ जाओ, मैं भी आजकल चक्की पीसता हूँ। अब दोनों साथ साथ पीसा करेंगे तो मन भी लगेगा और मेरे साथ तुम भी स्वस्थ और निरोग रहोगी।
दो वाशिंगटन कार्यालय से लौटकर प्रतिदिन 2 घंटे खराद का काम करते और कुर्सी मेजे बनाया करते। एक दिन वे खराद चला रहे थे कि उनके एक मित्र वहां पहुंचे और बोले, बाजार में बहुत अच्छा फर्नीचर मिल सकता है, फिर इस छोटे से काम में समय गंवाने से क्या फायदा। वाशिंगटन ने उत्तर दिया, भाई अच्छे सामान की बात नहीं, मैं आफिर की सुस्ती दूर किया करता हूँ, देखो ना, इसीलिए तो मैं स्वस्थ और निरोग हूँ।
3 इंग्लैंड की विश्व सुंदरी से पूछा गया,
आपकी सुंदरता और सुगठित शरीर का रहस्य क्या है। उन्होंने बताया, दिन में कई बार शुद्ध जल पीना और परिश्रम से जीना चुराना। 4 एक किसान के 4 बेटे थे, पर थे चारों आलसी और कामचोर। पिता मरने लगा तो उसे एक ही चिंता थी कि इन आलसी बेटों का पालन कौन करेगा।
आखिर उसे एक उपाय सूझा।
उसने चारों लड़कों को बुलाकर कहा, उस खेत में मैंने धन गाड़ रखा है,
खोद कर निकाल लेना। यह कहते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
दूसरे दिन लड़कों ने सारा खेत गोड़ डाला, पर कहीं धन न निकला। तभी एक माली उधर से गुजरा, उसने कहा, धन नहीं निकला तो क्या हुआ, इस खेत में बीज बोकर तो देखो। लड़कों ने शाक भाजी के पौधे लगा दिए, उससे इतनी शाक भाजी हुई कि उनका वर्ष भर का खर्च निकल आया।
लड़के बाप के मंतव्य को समझकर उस दिन से परिश्रमशील बन गए। 5 तब बीमारियां एक पहाड़ पर रहा करती थी।
उन दिनों की बात है, एक किसान को जमीन की कमी महसूस हुई, अतः उसने पहाड़ काटना शुरू कर दिया।
पहाड़ बड़ा घबराया, उसने बीमारियों को आज्ञा दी, बेटियों टूट पड़ो इस किसान पर और इसे नष्ट भ्रष्ट कर डालो।
बीमारियां दंड बैठक लगाकर आगे बढ़ी और किसान पर चढ़ बैठी। किसान ने किसी की परवाह नहीं की, डटा रहा अपने काम में। शरीर से पसीने की धारा निकली और उसी में लिपटी हुई बीमारियां भी बह गईं।
पहाड़ ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया, मेरी बेटी होकर तुमने हमारा इतना काम नहीं किया, अब जहां हो वहीं पड़ी रहो।
तब से बीमारियां परिश्रमी लोगों पर असर नहीं कर पाती, गंदे लोग ही उनके शिकार होते हैं।
28 स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रकृति का अनुसरण आवश्यक है। प्रश्न,
एक वन्य जीव स्वस्थ न निरोग क्यों रहते हैं। 2 निरोग रहने के उपाय लिखो। 3 उपयुक्त भोजन की परीक्षा कैसे की जाए।
4 हमारा सर्वोत्तम भोजन क्या है। 5 आहार में सबसे हानिकारक वस्तु क्या होती है। 6 तले व भुने पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अहितकर क्यों होते हैं। 7 स्वास्थ्य के लिए कैसा वातावरण जरूरी है।
8 परिश्रम के क्या लाभ हैं, शारीरिक श्रम कितना किया जाए। 9 ब्रह्मचर्य जीवन के लिए क्यों आवश्यक है।
10 हमारा जीवन किस प्रकार का हो। कथाएं। 1 प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ज़ीरो जेफरसन से एक आदमी ने पूछा, तमाम रोगों की एक औषधि क्या हो सकती है। जेफरसन का उत्तर था, कुछ दिन जंगल में किसी नदी के किनारे का एकांतवास और कच्चे फल फूल अन्न का आहार। 2 महाराज अजातशत्रु एक बार एक यात्रा के समय बीमार पड़ गए।
वह बीमार पड़ गए पर वहां कोई वैद्य नहीं था।
महाराज ने एक वैद्य बुलाकर ग्रामवासियों के लिए औषधि की व्यवस्था कर दी, पर लंबे समय तक वैद्य के पास एक भी रोगी न आया। आखिर वैद्यराज को दिन काटना कठिन पड़ गया, तब उन्हें वापस बुला लिया गया।
3 सर्वेक्षण से पता चला कि रूप से अजरबैजान क्षेत्र के लोग दुनिया में सबसे अधिक दीर्घजीवी होते हैं। इस पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने उसके कारणों की खोज की तो पता चला कि वहां के लोग अधिकांश समय खुले खेतों में काम करते, पहाड़ों पर चढ़ते, झरनों का पानी पीते और आहार में भी शाक और दूध आदि प्राकृतिक तत्वों को ही प्रमुखता देते हैं, इसी कारण वे दीर्घजीवी होती हैं।
ये लोग इंद्रिय निग्रह का भी पालन करते हैं। 4 गुरुवर।
एक शिष्य ने पूछा, मनुष्य इतनी सुविधा में रहता है, अच्छी अच्छी चीजें खाता है, फिर भी उसे हमेशा बीमारी लगी रहती है। हमेशा दवा खाता रहता है, पर जिन्हें घर मकान औषधि उपलब्ध नहीं, वह जंगल के जीव हमेशा निरोग रहते हैं, सो क्यों।
आचार्य ने बताया, वे प्राकृतिक जीवन जीते हैं, इसलिए कपड़े पहनना, प्रकृति के विपरीत आचरण करना, परिश्रम से जी चुराना, चाहे जो कुछ चाहे जैसे तल भूनकर खाना, यह अप्राकृतिक आचरण ही मनुष्य को रोगी और प्राकृतिक आचरण ही अन्य जीवधारियों को स्वस्थ रखते हैं। 5 अमरीकी दार्शनिक थोड़ी शराब व सिगरेट नहीं पीते थे।
एक बार एक भोजन में मित्रों ने शराब पीने का बहुत आग्रह किया, बोले, आप पीकर तो देखें इसमें कितनी मस्ती है। थोरी ने कहा, जो मस्ती जो शक्ति पानी में है, वह बेचारी शराब में कहां, आप तो हमें एक गिलास जल दे दीजिए। उन्होंने जल को ही सर्वोत्तम पे माना और उसकी अतिरिक्त कभी कुछ नहीं पिया।
29 आहार और विहार का असंयम न बरतें। प्रश्न,
एक शारीरिक सामर्थ्य बनाए रखना हमें क्यों आवश्यक है। 2 अस्वस्थ रहने के कारण हमें क्या हानियां हैं। 3 शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हमें करना चाहिए। 4 आहार के क्या नियम हमें पालन करना चाहिए। 5 आहार हमें किस दृष्टि से ग्रहण करना चाहिए। 6 किस तरह की वस्तुएं खानी चाहिए, किस तरह की नहीं, तथा हमारी मनःस्थिति उस समय किस तरह की होनी चाहिए। 7 एक बार भोजन करने के बाद फिर भोजन कब और कैसे करना चाहिए। 8. भोजन किस तरह से किया जाना चाहिए? 9. आहार के सिवा और किस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए? किस तरह?
10. नियमित दिनचर्या किस प्रकार श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाती है? कथाएं. 1. प्रसिद्ध अमरीकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड, जिनके कारखाने में 5 सेकंड में 1 फोर्ड कार बनती है, एक बार फैक्ट्री घूमने आए. वहां मजदूरों को मोटी मोटी रोटियां खाते देखकर बोले, मेरी मृत्यु होगी तब भगवान से एक ही वरदान मांगूंगा कि वह मुझे भी मजदूर बनाए.
साथी ने साश्चर्य पूछा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया, स्वाद के असंयम के कारण मेरा पेट इतना खराब गया है कि चाय और सिगरेट के अतिरिक्त कुछ पचा ही नहीं पाता. मुझे मजदूरों को इस तरह खाते देख ईर्ष्या होती है. दोकाव ऋषि के पुत्र सौभरी ऋषिपद प्राप्त करने के समीप ही थे. तब की बात है, एक दिन वे एक नदी के किनारे गए और एक मच्छर राज की कामक्रीड़ा देखने लगे. उस दृश्य की उपेक्षा करने चाहिए थी, कुचेष्टा में रस लेने का परिणाम यह हुआ कि उनकी वासना जग गई.
तब छोड़कर उन्होंने प्रसिद्ध सियु की कन्या से विवाह कर पुत्रेषणा में डूब गए और एक साधारण गृहस्थ मात्र रह गए. काम वासना ने उनका सारा ओज तेज और ब्रह्मवर्चस्व नष्ट कर दिया. 3. सुंद और उपसुंद सगे भाई थे, दोनों के पराक्रम का कोई ठिकाना न था,
पर सबसे बड़ी बात थी दोनों का प्रेम और संगठन. इसी बूते पर दोनों ने बड़े बड़े देवताओं तक को जीत लिया था.
पर तिलोत्तमा नामक सुंदरी को देखते ही दोनों की कामवासना भड़क उठी.
दोनों ही उसे प्राप्त करने के प्रयत्न में आपस में ही लड़ मरे और जो किसी के द्वारा नष्ट नहीं ही सके थे वह अपने आप नष्ट हो गए.
4. दमयंती अकेली वन में भटक रही थी, तब एक दुष्ट बहेलिया उन पर झपटा और बलपूर्वक उनका शील अपहरण करने पर तुल गया. दमयंती न डरी न भयभीत हुई. क्षत्रानी ने मुकाबला किया और बहेलिए को धरपटका. व्याध सती की झटक सह नहीं सका, उसकी वहीं मृत्यु हो गई. 5. महर्षि गौतम अभी सोए थे कि मुर्गे ने बांग दी. वे उठकर स्नान के लिए चल पड़े. स्नान व संध्या हो चुकी, फिर भी सूर्य न निकला तो वे समझ गए कोई छल हुआ. घर आए तो देखा कि इंद्र और चंद्रमा ने उनकी पत्नी अहिल्या का सतीत्व नष्ट कर दिया है. उन्होंने ही मुर्गे की बांग दी थी. महर्षि ने तीनों को शाप दे दिया. इंद्रियशक्ति रोक न सकने के कारण इंद्र को 1000 भग, चंद्रमा को कलंकी और अहिल्या को पत्थर हो जाना पड़ा.
आज भी उनके इस कुकृत्य पर लोग उन्हें अश्रद्धा से देखते हैं.
6. भस्मासुर ने शिव को प्रसन्न कर यह वरदान पाया कि जिसके ऊपर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा. वरदान पाकर वह बड़ा शक्तिशाली हो गया, किंतु कामुकता के कारण अपने इष्टदेव की ही अहित की बात सोच बैठा. भगवान विष्णु स्त्री वेश बनाकर पहुंचे और बोले, एक हाथ कमर और दूसरा हाथ सिर पर रखकर नाचो तो विवाह कर लूं. कामुक ने अपने विवेक बुद्धि खो दी, वैसे ही नाचने के उपक्रम में खुद ही जलकर भस्म हो गया. 30. संयम बरते सुखी रहें. प्रश्न. 1. संयम का अर्थ समझाते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए.
2. संयम कितने प्रकार का होता है? 3. किसी संयम के प्रकार एवं लाभ बताओ. 4. अपच का मूल कारण क्या है?
ब्रह्मचर्य के महत्व पर प्रकाश डालिए. 6. दृष्टि संयम से क्या लाभ है? 7. श्रवण संयम का तात्पर्य क्या है? 8. नासिका संयम का ध्यान कैसे रखा जाए? 9. समृद्धि का सदुपयोग क्या है? 10. सबसे कल्याण का राजमंत्र क्या है? कथाएं.
1. पड़ोस की एक स्त्री नेपोलियन से बहुत छेड़छाड़ करती, पर नेपोलियन उसकी ओर ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई में जुटा रहता.
कुछ दिन पीछे नेपोलियन अपने देश का सेनापति बन गया.
वह अपने संबंधियों से मिलने घर गया तो उस स्त्री से भी मिला और पूछा, यहाँ कोई नेपोलियन नामक लड़का पढ़ता था, आप उसे जानती है?
इस पर स्त्री बोली, हाँ, था एक नीरस किताबी कीड़ा. नेपोलियन हंसकर बोला, श्रीमती जी, यदि वह उन दिनों नीरस न रहा होता तो आज देश का प्रधान सेनापति बनकर आपके सामने न खड़ा होता. टूप सप्तर्षियों की बैठक होने वाली थी, उससे पूर्व ही वेदव्यास को महाभारत लिखकर देना था. समय कम था तो भी उन्होंने गणेश जी की मदद ली और महाभारत लिखना प्रारंभ कर दिया. महाभारत समय से ही पूर्व लिखा गया. अंतिम श्लोक लिखाते हुए हुए व्यास जी ने कहा, गणेश, आश्चर्य है कि पूरा महाभारत लिख गया और बीच आप एक शब्द भी नहीं बोले.
गणेश जी ने कहा, भगवान, इस संयम के कारण ही हम लोग वर्षों का कार्य कुछ ही दिन में संपन्न करने में समर्थ हुए हैं.
3. कॉम्स ने मार्ग में पड़ी एक घायल स्त्री को देखा, एक क्षण ठहरे, फिर कुछ सोचकर आगे चल पड़े. पीछे उनके गुरु का वाये, उन्होंने उस स्त्री को देखा तो करुणा उभर आई.
कर आश्रम में उपचार किया.
कॉट्स को बुलाकर उन्होंने पूछा, तात, क्या तुमने इस घायल स्त्री को नहीं देखा था? देखा था गुरुवर, सिर नीवा किए. कॉट्स ने कहा, किंतु स्त्री का सौंदर्य मुझे विचलित न कर दे, इसी भय से इसे उठाया नहीं.
महर्षि कव ने कहा, तात, जिस प्रकार पानी से बाहर तैरना नहीं सीखा जा सकता, उसी प्रकार सामाजिक कर्तव्यों से बाहर रहकर संयम का भी अभ्यास नहीं हो सकता.
4. स्वामी विवेकानंद उन दिनों साधक जीवन यापन कर रहे थे. एक दिन एक सुंदरी युवती उनके कमरे में आई, उत्तेजक हाव भाव प्रदर्शित करने लगी.
विवेकानंद को लगा जैसे उन्हें मन पर वश करना कठिन हो, तो उन्होंने धोती खोली और जलते तवे पर बैठ गए।
युवती यह देखते ही भाग गई, पर स्वामी जी का चूतर बुरी तरह जल गया।
एक महीना अस्पताल में इलाज कराना पड़ा, पर स्वामी जी ने मन की वासना स्वीकार न की।
फाइव शरशया पर पड़े भीष्म पितामह कौरवों पांडवों को धर्मोपदेश दे रहे थे, तभी द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसते देख पितामह ने पूछा, तात असमय हंसने का कारण क्या है?
द्रौपदी बोली, पितामह क्षमा करें, आज तो आप इतने ज्ञान की बातें कर रहे हैं। एक दिन कौरवों की सभा में मेरा अपमान हो रहा था, वस्त्र खींचे जा रहे थे, तब आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? भीष्म पितामह बोले, बेटी तब मेरे मन पर कुधन्य का प्रभाव था, जो कई दिन के उपवास के कारण अब दूर हो गया है।
31 हम अस्वच्छ न रहें, घृणित न बने। प्रश्न 1 गंदा आदमी किस कारण घृणित माना जाता है?
2 बीमारी किस जगह में अधिक होती है? 3 हमें भारतवर्ष में स्नान किस प्रकार करते रहना चाहिए? 4 अपने दांतों को अधिक टिकाने तथा मुंह में बदबू न आने देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 5 अपने कपड़े जो कि हम रोज व्यवहार में लाते हैं किस प्रकार स्वच्छ किए जाना चाहिए? 6 अपने घरों को अपने कमरों को किस प्रकार जमाना चाहिए? 7 मलमूत्र से सफाई रखने के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए?
8 स्वच्छ रहने का प्रतिफल हमें क्या मिलेगा? कथाएं 1 तूल दूसरित वेश और अस्त व्यस्त केश। एक व्यक्ति संत सुकरात के पास जाकर बोला, महाराज धर्म दीक्षा दीजिए। सुकरात बोले, जाओ और साबुन लेकर कपड़े साफ करो, यही तुम्हारी दीक्षा है। 2 साधु ने मल्लाह के लड़के को देखा, सारे शरीर में फोड़े, दाद फुंसी हो रही थी।
बोले, क्यों स्नान नहीं करता क्या? उसका पिता बोला, महाराज हम लोग मल्लाह हैं, हम तो पानी में काम काम करते हैं, कई बार स्नान होता है। साधु बोले, एक बार स्नान करो पर मैल छुटाकर करो तो वही 100 स्नान के बराबर है।
3 आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए तो उन्हें बहुत से लोगों ने उपहार दिए। 1 महिला ने झाड़ू दी।
आइजनहावर ने एक भोज में वह झाड़ू दिखाते हुए कहा, यह है मेरा शरीर और मन की सफाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा।
4 वर्धा गांधी जी के आश्रम में 2 साधु आए और बोले, हमें सेवा का काम दीजिए। गांधी जी ने उस समय तो उन्हें खिला पिला कर सुला दिया, पर सवेरे ही झाड़ू लेकर पहुंचे और बोले, आज आश्रम की सफाई आपको करनी है। साधु मौन मेख निकालने लगे तो बापू बोले, जो सफाई नहीं कर सकता वह सेवा क्या करेगा। 5 एक गांव का युवक ऋषि दयानंद के पास जाकर बोला, महाराज मुझे स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैंने 108 बार गंगा जी का स्नान किया है, मेरे सभी पाप धुल गए। महर्षि हंसकर बोले, तेरे शरीर का मैल छूटा नहीं, मन का मैल क्या छूटेगा, बेटा जा और पहले स्नान का ही स्वरूप सीख करा।
6 गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव वालों को सफाई का महत्व समझा रहे थे और उन्हें मूत्रालयों तथा संदासों की सफाई की योजना बता रहे थे, तभी एक आदमी ने कहा, महाराज यह काम आप भंगियों को सिखाए, हमें क्यों सिखाते हैं? गांधी जी बोले, गंदगी आप करें और सफाई भंगी करें, यह अनीति अधिक दिन चलेगी।
अपनी सफाई की व्यवस्था सबको आप करनी पड़ेगी।
32 थलती आयु का उपयोग इस तरह करें।
प्रश्न
1 पुरानी भारतीय परंपरा के अनुसार मानव जीवन कितने भागों में विभक्त है तथा उनमें उन्हें क्या क्या कार्य करना होता है? 2 जब तक हम पुरानी भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन निर्वाह करते रहे हमें क्या लाभ होता रहा?
3 जीवन का प्रारंभिक चौथाई भाग क्या कहलाता है,
इसका क्या महत्व है?
4 गृहस्थाश्रम के बारे में लिखिए। 5 वानप्रस्थाश्रम में मनुष्य घर के लिए क्या काम करता रहता था? 6 वानप्रस्थाश्रम में मनुष्य समाज के लिए किस प्रकार लाभदायक होता था?
7 अंतिम आश्रम क्या है तथा इसके कार्य क्या हैं?
8 वानप्रस्थ आश्रम परंपरा के लोप हो जाने से हमारे भारतीय समाज को क्या हानियां उठानी पड़ी हैं?
9 आपके विचार में इन चारों आश्रमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आश्रम समाज के लिए कौन सा है तथा क्यों?
कथाएं 155 वर्ष की आयु में अध्यापक से रिटायर एक व्यक्ति ने विद्या की साधना प्रारंभ की।
लोगों ने कहा, यह भी कोई पढ़ने की आयु है? इस पर उन्होंने कहा, यदि मनुष्य घर गृहस्थी के मोह का परित्याग कर सके तो इस आयु जैसा बौद्धिक और आत्मिक विकास किसी आयु में भी नहीं हो सकता।
उन्होंने अपनी साधना प्रारंभ की, सारी दुनिया में वेदों का पहला विद्वान होने का गौरव पाया। यह और कोई नहीं शतजीवी पम 0 दामोदर सातवलकर थे। 2 महर्षि याज्ञवल्क्य की आयु ढलने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी धन संपत्ति का अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी में बंटवारा शुरू कर दिया। मैत्रेयी ने पूछा, स्वामी आज यह बंटवारा क्यों आवश्यक हो गया? याज्ञवल्क्य बोले, भद्रे अब मेरी आयु ढल रही है, इस अवस्था में सांसारिक मोह कम करके लोक सेवा और आत्म कल्याण की बात सोचनी चाहिए। चतुर मैत्रेयी ने पति की आकांक्षा की गहराई को ताड़ लिया और अपने हिस्से की सारी संपत्ति कात्यायनी को सौंपकर स्वयं भी आत्म कल्याण की साधना में जुट गई। 3 राचरण अपनी वृद्धावस्था में गुरु बालानंद जी के साथ वैद्यनाथ धाम में रहकर साधना करने लगे। रामचरण को एक दुशाला दे दिया। एक दिन रामचरण ने ठंड से सिकुड़ते एक गरीब को देखा। उन्होंने दुशाला उस व्यक्ति को दे दिया।
बालानंदी जी को इसका पता चला तो उन्होंने जो लोग लोभ मोह त्याग देते हैं रामचरण की तरह वही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। चार्क्षवर गया बोला, यह तो मेरा घर, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, घर चाहे तो मुझे छोड़कर हट जाए।
दो दिन तक शव पड़ा रहा। बिंदु को खड़ी हुई तो बच्चों ने जबरन उठाकर शव को शमशान घाट पर जा पटका। शरीर के साथ आत्मा भी चली गई पर अनावश्यक मोह का पश्चाताप लेकर गई। 5. एक साधु ने एक सद्गृहस्थ को समझाया, तात यही अवस्था है जब तुम्हें आत्मोत्थान की